पेज 331 331 हम लोग इस कैंटो द हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन के अंतिम भाग में हैं। आगे बढ़ने के पहले दो चार मिनट के लिए थोड़ा सा हम लोग एक सूक्ष्म विषय पर विचार कर लें कि जो कुछ अश्वपति ने अनुभव किया वह सब तो हमने पढ़ा, किंतु ये अनुभव का आधार क्या है। तैतृय उपनिषद में और अन्यत्र ये कहा गया है कि आत्मतत्व ने स्वयं को पांच वस्त्रों में लपेटा हुआ है। ये आवरण हैं जिनको पंचकोश के नाम से जाना जाता है। सबसे कठोर आवरण जो बाहरी आवरण है, जड़ जगत भौतिक आवरण, उसको अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, अतिमानसिक या अविज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये आवरण तो आत्मतत्व ने स्वयं को इनमें लपेटा हुआ है। ये ज्ञान उपनिषद वेद उस समय के ऋषियों के पास था, किंतु जो जीवात्मा है, जो व्यक्तिगत रूप से आत्मा का ही एक तत्व है जो धरती पर आता है, अब तक वो भौतिक प्राणिक यानी अन्नमय प्राणमय और मानसिक मनोमय, ये तीन कोशों को तो वो धारण कर लेता है जिसको कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी। और उसी के अनुरूप तीन प्रकार की पर्सनैलिटीज होती हैं, एक भौतिक, एक प्राणमय और एक मेंटल पर्सनैलिटी। किंतु इसके आगे सुप्रामेंटल पर्सनैलिटी और आनंदमय पर्सनैलिटी ये संभव नहीं हुआ है अभी तक। आत्मतत्व ने, स्पिरिट ने उसको धारण किया हुआ है, किंतु इंडिविजुअल जीवात्मा उसको धारण नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही वो धारण करने का प्रयास करेगी वो समाप्त हो जाएगी, वो उसमें विलय हो जाएगी। तो जितने भी ऋषि हुए वो मनोमय जगत के, मनोमय पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के अंतिम शिखर पर, अधिक से अधिक, बहुत कम है जो अंतिम शिखर पे भी पहुंचे, वहां पहुंचकर वो उस सूर्य का आवाहन करते थे ताकि कुछ किरणें ओवर माइंड की परत से निकल करके मन को, प्राण को इसमें उतर करके कुछ हद तक इस पर्सनैलिटी को एक बल, एक तेज प्रदान कर सकें। और जहां तक सुपरमाइंड का प्रश्न है, मृत्यु पर्यंत या जीवित रहते वो स्वयं को उसमें आत्मसात करके विलीन हो जाते थे, क्योंकि वहां पर एक आप आत्मतत्व जीवात्मा वहां नहीं रह सकती है, वो उसमें विलीन हो जाएगी, वो इतना उसमें तेज है, प्रताप है। ये पहली बार आध्यात्मिक इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं कि श्री अरविंद, अशुपति के माध्यम से श्री अरविंद के स्वयं के अनुभव हैं, सुप्रामेंटल वर्ल्ड में सुप्रामेंटल पर्सनैलिटी को धारण करके वो सुप्रामेंटल जगत का पूरा विवरण हम लोगों को दे रहे हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत घटना है। साथ ही इससे अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये निरुद्धा के प्रश्नों में आएगा और कई लोग प्रश्न करते हैं। एक श्री अरविंद माता जी की सुप्रामेंटल पर्सनैलिटी है जो आज तक किसी सियर सेज की नहीं हुई, क्योंकि वो संभव नहीं था, लेकिन पहली बार वो धारण करते हैं इस पर्सनैलिटी को और धरती के लिए इसकी संभावना खोल देते हैं, जिसको कहा जाए ऑर्गेनाइज्ड सुप्रामेंटल पर्सनैलिटी, एक व्यक्तिगत जीवात्मा की हो सकती है। और दूसरा है, उस सुप्रामेंटल पर्सनैलिटी के कारण उसको धारण करने के बाद उसके प्रताप से, उसके तेज से धीरे धीरे इस शरीर का सुप्रामेंटलाइजेशन यानी देह का रूपांतरण, ये दो थोड़ी सी भिन्न चीज हैं। तो यहां पर जो अब तक अशुपति ने प्राप्त किया है, और वो कुछ कम नहीं है, पूरे आध्यात्मिक इतिहास को बदल देते हैं या एक प्रकार से नई कहानी लिख देते हैं, वह है कि ही हैज एज्यूम्ड ए सुप्रामेंटल पर्सनैलिटी। सुप्रामेंटल जगत में वो सुप्रामेंटल देह धारण करके वहां पर विचरण करते हैं, लेकिन उनके जो बाकी तत्व हैं वो अभी भी रूपांतरित अवस्था में नहीं है, वो इस धरती पर छोड़ करके वो बाहर निकल करके एक ऑर्गेनाइज सुप्रामेंटल पर्सनैलिटी धारण करके सुप्रामेंटल जगत में जाते हैं। लास्ट पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ट्रांस से निकल करके जब वो उस जगत में जाते हैं, जिसको अब तक हम लोग कहते आए थे निर्विकल्प समाधि, वहां जाने के बाद शेष कोई संस्कार नहीं रहते और व्यक्ति उसमें विड्रॉ कर जाता है, उसमें सचेतन नहीं रह सकते हम, वो सब कुछ उसके अंदर समाप्त हो जाता है, और अगर अधिक समय तक व्यक्ति उसमें रहे तो ही कैनॉट कम बैक टू द बॉडी, इवन बॉडी डिजॉल्व हो जाएगी। श्री अरविंद वहां पर जाते हैं और वहां से यह शरीर एक छाया रूप में प्रतीत होता है। ये बड़ी सुंदर, जैसे यहां से भगवान, कई लोग कहते हैं पता नहीं मिथोलॉजी है, कथाएं हैं, किस्से हैं, एक छाया रूप में है, ऐसा यहां प्रतीत होता है जड़ तत्व का चश्मा पहन के। लेकिन सुप्रामेंटल विजन से शरीर लगता है एक छाया रूप में। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, हिज बॉडी गैदर्ड इन टू मिस्टिक स्लीप, ए फॉरेन शेप इट सीम्ड, ए मिथिक शेड। मानो ये क्या है, ये मेरा शरीर नहीं है। माता जी के एजेंडा के अनुभव हम लोग पढ़ेंगे ट्यूजडे क्लास में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो माता जी कहती हैं मैं अब इस तरफ नहीं हूं, मैं अप्रैल 1962 के बाद, 62 के बाद मैं उस तरफ चली गई हूं, तो मृत्यु के लोक में चली गई हैं। उसके बाद जितने अनुभव है माँ के, वहां से वो कहती हैं ये शरीर, लोग सोचते हैं मेरा ये शरीर है, इस तरह मैं शरीर में हूं ही नहीं। श्री अरविंद से भी कई बार वो कहते हैं मैंने ये शरीर तो कब से छोड़ा हुआ है, मैं इसको केवल एक सेंटर ऑफ एक्शन के लिए इसको रखा हुआ है मैंने धरती पर। माता जी एक जगह कहती हैं ऐसा हम कह सकते हैं माई बॉडी, लेकिन इट कैन बी एनी बॉडी, माई बॉडी, दिस बॉडी, दैट बॉडी, सब मेरे शरीर हैं। तो एक अलग ही विजन है ऑल टुगेदर। और अश्वपति वहाँ से जब अपने शरीर को देखते हैं तो फॉरेन शेप, हम लोग शरीर से जुड़े होते हैं, परंतु उनके लिए ये किसका है, कौन सा देह है, इस प्रकार से वो देह प्रतीत होती है। मिथिक शेड, एलियन नाउ सीम दैट डिम फार यूनिवर्स, सेल्फ एंड इटर्निटी अलोन वे ट्रू। वो जगत जिसको वो पीछे छोड़ आए हैं, जहां देह भी देख के उनको लग रहा है किसी और की देह है, और वो ब्रह्मांड जगत ऐसा लग रहा है कि वो ना जाने किसका जगत है, वो एलियन बेगाना, जिससे कोई मेरा लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। लेकिन फिर क्या चीज है जो हमको वापस यहां खींच लाती है, एक एक लाइन इसमें जो है पूरा लाइव डिवाइन में श्री अरविंद ने विस्तार से बताया है। देन मेमरी क्लाइम टू हिम फ्रॉम द स्ट्राइविंग प्लेन्स, ब्रिंगिंग ए क्राई फ्रॉम वंस लव्ड चेरिश्ड थिंग्स। अक्सर हम लोग आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी मेमोरी कमजोर हो गई है। मेमोरी कमजोर तब होती है जब हम इस शरीर को शरीर अपना नहीं समझे, क्योंकि मेमोरी ही है जो हमको वापस खींच कर लाती है, जोड़ देती है शरीर के साथ, और हम उठ के फिर से कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे बंधु हैं, ये मेरे सखा हैं, ये मेरा घर है, ये स्मृति है। वास्तव में निद्रा की अवस्था में, स्वप्न अवस्था में हम विस्मृत हो जाते हैं, और वापस मेमोरी हम लोगों को इस शरीर की ओर ले आती है, खींच लेती है, और उन्हीं चीज़ों से हमें फिर से बांध देती है। देखिए मेमोरी, माता जी एक जगह कहती हैं मेमोरी इज द ग्रेट एलाई ऑफ अटैचमेंट। लोग कहते हैं अटैचमेंट क्यों होता है, स्मृति से होता है। देखिए कितना सूक्ष्म विज्ञान है ये, मनोविज्ञान है इसका। फिर इससे एक बहुत विधि निकलती है आध्यात्मिक साधना की। तो इससे हमें कैसे मुक्त हो, लोग अटैचमेंट से मुक्त होने का प्रयास कैसे करते हैं, डिटैचमेंट कैसे करते हैं, सबको छोड़ के, दैट इज नॉट द वे। आप नहीं हो सकते हो, आप अपने अंदर अपने अहंकार से अटैच हो जाओगे, क्योंकि स्मृति रूप में सब अंदर में रहेंगे। माता पिता चले जाते हैं, बरसों बच्चे उनसे जुड़े रहते हैं, क्यों, स्मृति। वास्तव में कौन सी चीज जोड़ती है, स्मृति। और जब किसी का स्मृति विहीन हो जाता है तो अस्पताल में पड़ा है, सब आ रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि कौन है, स्मृति जोड़ती है। तो फिर काट क्या है इसका, रिमेंबरेंस ऑफ द डिवाइन कट्स अस फ्रॉम ऑल अटैचमेंट। बाहर से नहीं, हमारे अंदर स्मृति अब कौन सी आनी चाहिए। अब इसको अगर कोई ज्ञान योगी होगा तो वो कहेगा शिवोहम, आई एम दैट, इसी को याद करेगा, और कोई भक्त होगा तो मा करेगा। तो इस स्मृति के द्वारा हमारी बाहरी स्मृतियां, बाकी स्मृतियां संसार से जुड़े रहते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो जो क्लिंगिंग अटैचमेंट है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो स्मृति वहां से जुड़ जाती है। कितना सुंदर इसमें साइकोलॉजी है स्पिरिचुअल। एंड टू द क्राई एज टू इट्स ओन लॉस्ट कॉल, ए रेयर अप्लाइड फ्रॉम द ऑकल्ट सुप्रीम। अब इसमें जगह जगह मातृ मंदिर का वर्णन आएगा। rare applied to the occult supreme. From the occult supreme. देह के अंदर, मन के अंदर स्मृति पहुंचने की चेष्टा कर रही है अशुपति तक. अशुपति सुप्रामेंटल वर्ल्ड में है, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में वह उत्तर देते हैं, ए रे रिप्लाइड. उसी प्रकार से जब हम भगवान को पुकारते हैं माँ 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 माँ, तो हमारी स्मृति एक सीमा तक जा सकती है, किंतु उनकी सीमा नहीं है. हम सूर्य तक नहीं जा सकते, किंतु सूर्य की रश्मियां हम तक आ सकती हैं. ये सेविंग ग्रेस है. तो अमलदा की एक बड़ी सुंदर कविता भी है कि मेरा तो मुख जो है वो मट्टी का बना हुआ है, तो मेरी प्रार्थना तो एक सीमा तक जाएगी, किंतु तुम्हारे हाथ में है. तुम चाहो तो तुम भी अपना चेहरा, मट्टी का चेहरा बना के मेरे पास आ जाओ. इट्स सो ब्यूटिफुल कि भगवान इसीलिए मानव रूप धारण करते हैं. ए रेयर अप्लाइड फ्रॉम द ऑकल्ट सुप्रीम. इस के प्रत्युत्तर में फॉर इवन देयर द बाउंडलेस वननेस ड्वेल्स टू इट्स ओन साइट अनरिकॉग्नाइजेबल. इट लिव्ड स्टिल संक इन इट्स ओन टेनेब्रस सीज अपहोल्डिंग द वर्ल्ड्स इनकॉन्शियंट यूनिटी हिडन इन मैटर्स इनसेंटिएंट मल्टीट्यूड. Even there, अशुपति अभी भी वहीं से बता रहे हैं, even there, इस जगत में जहां सब कुछ डिवीजन के आधार पर लगता है, सब अलग थलग दिखाई देता है, वहां भी oneness dwell करती है. वास्तव में हम भगवान से कभी अलग नहीं होते. ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है. माता जी एक जगह कहती हैं, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है स्वयं को भगवान से अलग करने का, फिर चुप हो जाती हैं, फिर हंस के हल्के मजाक की अवस्था में कहती हैं, और हम सफल हो गए हैं. एंड वी हैव सक्सीडेड. किस चीज में सफल हुए हैं? इस भ्रांति में कि हम अलग हैं. ये बहुत भयानक भ्रांति है. इतनी बड़ी भ्रांति है कि विश्वास नहीं होता है कि सच में भगवान सब समय साथ में हैं. हम खाते हैं तो वो साथ में खाते हैं, हम वॉक करने जाते हैं तो वॉक करते हैं, सोते हैं तो साथ में सोते हैं. क्या रियली ऐसा ट्रू है? माता जी कहती यही एकमात्र ट्रूथ है, लेकिन हम जानते नहीं. ये भ्रांति है, लेकिन सत्य तो वननेस है. सत्य यही है कि इस अंधकार में, निश्चेतना में, देखिए इनकॉन्शियंट, जड़ अवस्था में भी एकत्व फिर भी उपस्थित रहता है. दिस सीट सेल्फ सोन इन द इनडिटर्मिनेट. अब वो एकत्व को कौन धारण करता है इस जड़ अवस्था में? चैत्य. उसके पास वही एक कुंजी है जिसके द्वारा हम एकत्व में प्रवेश कर सकते हैं. एकत्व इससे नहीं आता कि हम लोग मन में मान ले कि हाँ हम सब भाई बहन हैं. प्राण तत्व बहुत मूर्ख बनाएगा. एकत्व प्रकट होता है जब हम चैत्य के द्वार से यूनिवर्सल में प्रवेश करते हैं. उसी के अंदर ये चाबी है उसको सही रूप में समझने की. नहीं तो हम लोग उस व्यक्ति की तरह मूर्खता करेंगे कि जो शिष्य ने पढ़ा था सब एक है, जाकर के उसने हाथी को गले लगा लिया और हाथी ने उठा के फेंक दिया, तो उसने गुरु से कहा आपने कहा था सब एक है. कहते हाँ, लेकिन हाथी के ऊपर महावत कह रहा था ना मत करो मत करो, ऐसा तुमने सुना क्यों नहीं? वो भी तो भगवान का ही प्रतिरूप है. मानसिक तौर पर, प्राणिक तौर पर, भौतिक तौर पर हम लोग एकता नहीं ला सकते, ये संभव नहीं है. शेरविंद कहते हैं एसोसिएशन बना सकते हैं, लेकिन ट्रू यूनिटी केवल चैत्य के द्वार से आती है, क्योंकि चैत्य के अंदर वह एकत्व विद्यमान है मूल रूप में. लेकिन उसने क्या किया है? उसको जानबूझकर फॉरफिट, अपना राइट खो दिया है. अब देखिए कितनी सुंदर लाइन है ये. चैत्य का वर्णन है, इट दिस सीड सेल्फ सोन इन द इनडिटर्मिनेट. सेल्फ सोन, स्वयं हमने निर्णय लिया, किसी ने धक्का देके नहीं भेजा. भगवान ने नहीं कहा जाओ तुम लोग अंधकार में, जैसा कुछ रिलीजन्स में. हमने ये निर्णय लिया क्योंकि हम उन्हीं की सत्ता हैं, उन्हीं के पोर्शन हैं, कि हम इस इनडिटर्मिनेट, इस केओस में आएंगे. लेकिन इसमें आने के लिए हमको कुछ खोना पड़ेगा, अपना दिव्यत्व, अपना ही देवत्व. फोरफीटिंग इट्स ग्लोरी ऑफ डिविनिटी. दो प्रकार के लोग होते हैं काम करते हैं जो. एक होते हैं सुपरवाइजर, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे मत करो वैसे मत करो, जैसे बैक सीट ड्राइविंग होता है ना, अरे रे कार ऐसे चलाओ, अरे नहीं ब्रेक चलाओ, तो जो चला रहा है कहता है अच्छा ठीक है आप ऐसा करो आप चला लो, तब वो देखता है कि नहीं वही कठिनाई है। हम लोग कल बात कर रहे थे अरुणा शानबाग की मृत्यु की, तो रियली उन नर्सेज ने 42 साल किसी का इतने प्यार से बर्थडे मनाते थे, उसके कमरे में पेंटिंग करके फूल गुब्बारे लगा के वो अनकॉन्शियस है पर करते थे, बहुत बड़ी प्रेम की बात है, बिना प्रेम के करुणा की संभव नहीं है। लेकिन कोई कोई लोग आके आप ऐसे नहीं कर रहे हो वैसे नहीं कर रहे हो, तो जब ऐसा करते थे तो नर्सेस का जवाब होता था आप अपने घर ले जाइए, तो उनको लगता था देखो देखो ये हमसे इस तरह से बात कर रही हैं, परंतु उचित है, क्योंकि एक चीज होती है बाहर से सुपरवाइज करना, आप जब तक इस भाव में हो कि मैं सुपरवाइज करता हूं तब तक आप एक्चुअल काम नहीं कर सकते, काम करने के लिए आपको ये भूलना होता है, तब आप उसमें उतरते हो, कादो को साफ करने के लिए आप धोती को ऊपर करके उसमें उतर जाते हो, उस समय कोई कहेगा राजा आप नहीं, आप उस समय केवल एक कर्मचारी हो। तो उसी प्रकार से इस चैत्य ने अपनी ही दिव्यता को फोरफीट, ठीक है मैं भूल जाता हूं कि मैं दिव्य हूं, मैं इस अंधकार में उतरूंगा, इसको साफ करने के लिए, इसमें काम करने के लिए। कंसीलिंग द ओमनीपोटेंस ऑफ इट्स फोर्स, कंसीलिंग द ओमनीसियंस ऑफ इट्स सोल, एन एजेंट ऑफ इट्स ओन ट्रांसेंडेंट विल, इट मर्जेज नॉलेज इन द इनकॉन्शियंट डीप। यह आवश्यक होता है, और यहां तक कि जो बीइंग्स उच्च चेतना से आते हैं उनको भी ये करना होता है। स्वामी विवेकानंद के विषय में शारदा माँ की कहानी तो हम लोगों ने कई बार पढ़ी हुई है, बात हुई है यहां पर। श्री रामकृष्ण कहते थे जानबूझकर मैंने इसका ताला बंद किया हुआ है, इसको मुक्ति नहीं दूंगा, ये चिल्लाएगा तो भी नहीं मिलेगी, मैंने माँ काली को कहा है ताला बंद कर दो, ये चाबी मुझे दे दो तो कब मुक्ति, जिस दिन इसको पता चल गया ये कौन है तो ये फटाफट द्वार खोल के मुक्त हो जाएगा, लेकिन इसको काम करना है, तो काम करने के लिए विस्मृत कराना होता है। ये भगवान का देखिए खेल है, ये विस्मृति आवश्यक है, नहीं तो वो नहीं कोई करेगा। पता सनत कुमार को जब कहा गया कि आप सृष्टि को क्रिएट करो तो कहते हम क्यों करें, हम तो आपके मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी को कहा हम नहीं जाएंगे तो वापस मुड़ गए, दे नेवर केम ऑन अर्थ, क्योंकि वो जानते थे सदैव सचेत थे, तो वो इसमें क्यों आएंगे, इससे उनको क्या लेना देना है, तो उसको फॉरफिट करना पड़ता है। एन एजेंट ऑफ इट्स ओन ट्रांसेंडेंट विल, इट मर्जेज नॉलेज इन द इनकॉन्शियंट डीप, एक्सेप्टिंग एरर सॉरो डेथ एंड पेन, इट पेज द रैंसम ऑफ द इग्नोरेंट नाइट, रिडीमिंग बाय इट्स सब्सटेंस नेचर्स फॉल। यही चीज हमारे चैत्य के साथ है और यही चीज अवतार के साथ है। कभी कभी लोग पूछते हैं शेरविन ने ऐसा क्यों कहा, आई डोंट नो, या माता जी ऐसे पूछ क्यों रही हैं, उनको तो सब पता है। ये सच है कि उनकी सुपरामेंटल अवस्था में उनको सब मालूम है, किंतु वो यहां काम कर रही हैं। शेरविन का एक लेटर है, माता पुस्तक में भी लिखा हुआ है, वो जो 6 पत्र हैं, शी इज नॉट ऑल अबव, शी इज हियर, शी हैज चोजन एंड कंसेंटेड टू बी इन दिस इग्नोरेंस फॉल्सहुड एंड एरर। वो स्वयं इसमें आ जाते हैं ताकि इसको रूपांतरित कर सकें अपने प्रकाश पुंज से, और यही चीज चैत्य के साथ लागू होती है कि वो अपने दिव्य धाम को छोड़कर इस धरती पर आता है ताकि वो इस धरती को रूपांतरित कर सके, और उनको ये भूलना ये आवश्यक होता है। अब इसी सत्य को अशुपति की इस यात्रा से जोड़ रहे हैं शेरविन। हिमसेल्फ ही न्यू एंड व्हाई हिज सोल हैड गॉन इनटू अर्थ्स पैशनेट ऑब्सक्योरिटी टू शेयर द लेबर ऑफ एन एरेंट पावर विच बाय डिविजन होप्स टू फाइंड द वन। तो अब उस भूमि पर जाकर सुपरामेंटल जगत में अशुपति को वास्तव में ज्ञात होता है कि इस जगत में चैत्य क्यों आया, वह क्यों आए, उनकी आत्मा क्यों आई। जब तक हम सुपरामेंटल वर्ल्ड का दर्शन नहीं होता या उसमें नहीं उठते, तब तक लगता है कि यह संसार उफ पता नहीं किसने बना दिया, और वह कितना प्रकाशवान है, कितना वही असली है, और इसको छोड़ के वहां जाना यही सत्य है, निर्वाण को ही अल्टीमेट एम समझता है, लेकिन जब सुप्रामेंटल वर्ल्ड से देखता है तो कहता है हम तो थे ही यहां, हम गए हैं वहां इसके रूपांतरण के लिए। ये पहली बार, और ये सब कुछ श्री अरविंद बाद में हम सबको प्रसाद रूप में देंगे, याद दिलाएंगे कि हमारा असली लक्ष्य क्या है, लेकिन यहां पहली बार श्री अरविंद इस सत्य को जानते हैं अशुपति। और यहां पर क्यों चैत्य सत्ता आई है, देखिए कितनी सुंदर बात है। इनटू अर्थ्स पैशनेट ऑब्सक्योरिटी टू शेयर द लेबर ऑफ एन एरेंट पावर, वही शक्ति है जो यहां काम कर रही है, लेकिन वो खंड रूप में काम कर रही है, अंधकार में काम कर रही है, इसलिए वो एरेंट पावर। और वहां वो क्या कर रही है, डिवीजन के द्वारा उस एक को पाने का प्रयास कर रही है। तो ये क्यों अलाउ किया गया है, माता जी एक बड़े सुंदर उनका एक ऐसे है, उसमें वो कहती हैं कि संसार में इससे अधिक कोई भी ट्रैजिक, दुख से भरी, असंभव प्रतीत होने वाली अवस्था से भरी घटना हुई जब पहली बार वह एक उसके अंदर चारों तरफ अंधकार इनकॉन्शियंट आ गया और वह एक अनेकों अनेकों तारों में फूट पड़ा। डिवीजन की पावर इतनी एक्टिव थी कि मानो उसने एक को ही खंड कर दिया अनेकों में। पर मां कहती है लेकिन उस एक ने क्या किया, इस निविड अंधकार को अनेकों अनेक तारों की छटा से भर दिया। भगवान तो यही करते हैं, वो एरर को भी सुंदरता में बदल देते हैं। माता जी के पास मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक बच्ची खेल रही थी, खेल खेल में उससे टोमेटो सॉस जो होता है वो गिर गया जमीन पर, तो उसमें दो प्रतिक्रियाएं बता दी थी कि माँ बहुत गुस्सा होती है कि ये क्या कर दिया, फिर से साफ करना पड़ेगा इत्यादि इत्यादि, वो गलत प्रतिक्रिया है। सही प्रतिक्रिया बताई कि पिता एक क्षण को देखते हैं और फिर कहते हैं कोई बात नहीं, छोटी सी चीज़ है, ठीक हो जाएगी, अगली बार और केयरफुल रहना। लेकिन माता जी एक तीसरी प्रतिक्रिया करती हैं, क्योंकि वो माँ है और माँ ने सदैव ऐसा किया है। एक बच्ची आती है और एक पेंट करते करते रंग थोड़ा बिखर जाता है या इंक बिखर जाती है और वो रोने लगती है। माता जी देखती हैं फिर कहती कोई बात नहीं, अब हम इससे कुछ बनाएंगे। और वो जो रंग ऐसे एक ब्लॉट के रूप में था, माँ उस पर एक ब्रश लगाकर उससे एक चित्र बना देती हैं। कितनी सुंदर बात है। तो भगवान यही करते हैं, डिवीजन की पावर एक्ट करती है, मानो चीज़ें अलग हो रही हैं परंतु उसमें अनेकत्व में एकता का आनंद भगवान ले आते हैं। तो इसलिए चैत्य वहाँ पर गया है इस अनेकत्व में एकत्व को फिर से धारण करने। टू बीइंग्स ही वॉज, वन वाइड एंड फ्री अबव। आज ही मैं ये मुंडक उपनिषद के ट्रांसलेशन में ये पढ़ रहा था, ये बड़ी वेल नोन पंक्ति है, द्वा सुपर्णा। ये उपनिषद में बताया गया है कि दो चिड़िया हैं, एक नीचे है डाल पर, एक ही पेड़ पर दो चिड़िया हैं, एक डाल नीचे डाल पर बैठी है और फ्रूट को खा रही है, और खा रही है तो जैसे फ्रूट को खाएंगे तो अच्छा बुरा दोनों स्वाद उसको आ रहे हैं, लेकिन फिर वो मुड़कर देखती है ऊपर तो एक और ज्योतिर्मय चिड़िया बैठी है उसी पेड़ पर, और जब वो उसको देखती है जो ईश है, जो स्वामी है, जो मास्टर है, तो वो आनंदित हो उठती है। सो ये दो बर्ड्स का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ अशुपति अब इसी अनुभव को सावित्री में बता रहे हैं। टू बीइंग्स ही वॉज, वन वाइड एंड फ्री अबव, वन स्ट्रगलिंग बाउंड इंटेंस इट्स पोर्शन हियर। हम लोग तो आमतौर पर उस फ्री बीइंग को जानते ही नहीं हैं, हम लोग केवल इसको जानते हैं, बद्ध अवस्था को, या हम लोग जब फ्रीडम को जानते हैं तो इस बद्ध अवस्था को त्यागने की चेष्टा करते हैं, दो में से एक चीज। परंतु अशुपति कुछ और करेंगे, इसी द्वा सुपर्णा को अब वो एक अद्भुत टर्न दे रहे हैं। मुंडक उपनिषद में इसका एक्चुअली हिंट है, लेकिन केवल एक हिंट है जिसको डेवलप किया जा सकता है, परंतु स्पष्ट रूप में नहीं है। यहाँ श्री अरविंद स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, टू बीइंग्स ही वाज, एक ये अवस्था, हम सब इस अवस्था को रियलाइज कर सकते हैं। टू बीइंग्स, ये एक योग की अवस्था है जिसमें एक जो फ्री है, मुक्त है, विशाल है, और दूसरा जो इस धरती से बंधी है, छटपटा रही है। अब देखिए दृष्टि अंतर क्या होता है मनुष्य की और भगवान की। मनुष्य खाली उसको देखता है जो बाहर में बंधा हुआ छटपटा रहा है और उसके आधार पे जज करता है। भगवान किसको देखते हैं? वह पार्ट जो फ्री हो रहा है, और यही अंतर है। तो अशुपति देखते हैं टू बींग्स ही वास, एक जो ऊपर है और एक जो नीचे बद्ध है। ए टाई बिटवीन देम स्टिल कुड ब्रिज टू वर्ल्ड्स। अब वो इसको छोड़कर उसमें जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कौन सा सूत्र है जो दोनों को बांध दे, उसकी उन्मुक्तता से इसको भी मुक्त कर सके। ये उनका प्रयास है। इसीलिए यहां जो पुराने साधक, उनको जज करना बहुत कठिन है। माताजी ने कहा है ऐसे साधक थे जो बाहर से आपको दिखेगा कि उनके अंदर डिफेक्ट्स हैं, लेकिन वास्तव में वो अपने आप में अंतर में फ्री थे, परंतु उन्होंने जानबूझकर इसमें प्रवेश किया इस एक काम के लिए। अब द्युमन भाई को श्री अरविंद ने स्वयं कहा ही इज ए वैदिक ऋषि, वेद काल के ऋषि थे। बाहर से कोई ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम वो धारण करते हैं। प्रणबदा के बारे में माने कहा आई नो यू वेर कैप, इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव अ डेवलप्ड माइंड। कई लोग बोलते हैं नाना वो बुद्धि से नहीं, इट्स नॉट ट्रू, यू हैव डेलिबरेटली केप्ट दैट माइंड इन द बैकग्राउंड सो दैट यू कैन वर्क ऑन मैटर, जड़ तत्व। उन्हें जानबूझकर उसको लिया कि इस सबसे कठिन ये है, इस पर काम करेंगे। बट इनवर्डली एक अलग अवस्था है। कई सारे ऐसे लोग जो फ्री थे, जिनके साथ माँ अभी भी, ये कोई साधारण चीज है। श्री अरविंद की एक डायरी है जिसमें उन्होंने लिखा है किसी डिसाइपल के बारे में, तो पवित्रता के सामने लिखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ श्री रामाकृष्णा, एस्पेक्ट्स ऑफ श्री रामाकृष्णा, वो अपने अंदर धारण किए हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन किसी के बारे में चैतन्य, यानी दे आर ऑलरेडी फ्री बीइंग्स जो आए हैं यहां पर एक विशेष प्रयोजन से। तो अशुपति ये अनुभव सुपरामेंटल वर्ल्ड में करते हैं, लेकिन अब वो लिंक ढूंढ रहे हैं। देयर वॉज ए डिम रेस्पॉन्स, ए डिस्टेंट ब्रेथ, ऑल हैड नॉट सीज्ड इन द अनबाउंडेड हश, हिज हार्ट ले समवेयर कॉन्शियस एंड अलोन फार डाउन बिलो हिम लाइक ए लैम्प इन नाइट। लेकिन सब कुछ नीचे समाप्त नहीं हो गया था, एक हृदय था जो धड़क रहा था, जिसके अंदर प्रेम था, जो इस संसार के अंदर ज्योति प्रकाश शांति आनंद लाने के लिए इच्छुक था। Abandoned it lay, alone, imperishable, immobile with excess of passionate will. His living, sacrificed and offered heart, absorbed in adoration mystical, turned to its far off fount of light and love. अशुपति अब देख रहे हैं कि उन्हीं का हृदय उन्हीं को पुकार रहा है। बड़ी माता जी की प्रार्थनाएं पढ़ करके कुछ लोग कहते थे माँ तो भगवान है कहते हैं, लेकिन वो प्रार्थना क्यों कर रही हैं, किससे कर रही हैं? तो एक डिसाइपल ने कहा कि मेरे अंदर यह अंतर्भास आया कि माँ अपनी ही उच्चतम सत्ता से प्रार्थना कर रही हैं ताकि संसार को दिखा सकें कि चैत्य को कैसे अभिप्सा करनी चाहिए। क्या मेरा यह अनुमान सही है? श्री अरविंद कहते हैं यस यस, अपने ही। और फिर वो कहते हैं इस प्रकार की प्रार्थनाएं हम वेदों में भी देखने को मिलती हैं। श्री रामचंद्र जी की कहानी है ना, जहां वो प्रार्थना करते हैं दुर्गा माता को, शिव जी को, तो शिव कहते हैं मैं, आप तो स्वयं मेरे आराध्य हैं, लेकिन वो शिव की उपासना करते हैं। तो ये अपने ही उच्चतम सत्ता से प्रार्थना करना, तो यहां वो अनुभव करते हैं कि उन्हीं का हृदय उनको पुकार रहा है। In the luminous stillness of its mute appeal, it looked up to the heights it could not see. अब पहला हम लोगों ने जो मातृ मंदिर का वर्णन पढ़ा था, ए रे रिप्लाइड फ्रॉम द ऑकल्ट सुप्रीम, मातृ मंदिर में है ना एक रे। अब देखिए कुछ पंक्तियां हैं, मातृ मंदिर का परफेक्ट वर्णन है। It looked up to the heights it could not see. It yearned from the longing depths it could not leave. In the center of his seat, in the center of his vast and fateful trance, halfway between his free and fallen selves, interceding twixt God's day and the mortal's night, accepting worship as its single law, accepting bliss as the sole cause of things, refusing the austere joy which none can share, refusing the calm that lives for calm alone, to her it turned, for whom it willed to be. क्या सुंदर पंक्तियां. ये अवस्था होनी चाहिए साधक की. क्या अवस्था है? फ्री और फॉलन सेल्फ के बीच में चैत्य की अवस्था. एक्सेप्टिंग वर्शिप एज इट सिंगल लॉ. एकमात्र यही एक नियम है और कोई नियम नहीं है साधक के लिए. वर्शिप, भगवान की पूजा, अर्चना, आराधना, समर्पण. रिफ्यूज एक्सेप्टिंग ब्लिस एज द सोल कॉज ऑफ थिंग्स. साधक कभी निराश नहीं होता ये सोच करके. ये संसार, जब निराशा आती है तो उसको याद रहना चाहिए कि ये डेविल आ रहा है मेरे पास में. माता जी ने कहा है, पेसिमिज्म इज द टेल ऑफ द डेविल. साधक सदैव ये याद रखता है कि ब्लिस इज द सीक्रेट कॉज ऑफ थिंग्स. माता जी की कई जगह, माता जी भी सब साधक इस अवस्था से गुजरते हैं तो माता जी रास्ता दिखाती कि इस अवस्था में भी जब चारों ओर निराशा ही निराशा है, मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वस्तुतः तुम्हारा आनंद मेरे साथ है, मेरे अंदर है और सृष्टि के कण कण में विद्यमान है. एक्सेप्टिंग ब्लिस, ये धरती आनंद के लिए बनी है. एज द सोल कॉज ऑफ थिंग्स, रिफ्यूजिंग द ऑस्टियर जॉय विच नन कैन शेयर. साधक त्याग करता है. किस चीज का त्याग करता है? रंगीन कपड़ों का नहीं, कोई जरूरी नहीं है. ऑस्टियर जॉय विच नन कैन शेयर. एक और जगह सावित्री में लाइन आती है. सावित्री को जब ये संभावना दी जाती है कि तुम विश्वातीत अवस्था में सत्यवान के पास चली जाओ, सावित्री कहती है, इम्परफेक्ट इज द जॉय नॉट शेयर्ड बाई ऑल. मैं उस ब्लिस का, आनंद का क्या करूंगी जो मैं सबके साथ बांट नहीं सकती. ऑस्टियर जॉय, तपस्या द्वारा एक जॉय, आनंद नहीं. जब तक मैं सबके साथ नहीं उसको बांट लेता, सारी सृष्टि के कण कण को उस आनंद से भरता हुआ नहीं देख लेता, तब तक मैं इस संसार से कैसे चला जाऊं? ये तो अधूरा काम है. तो यहां रिफ्यूज करते हैं. क्या रिफ्यूज करते हैं? द ऑस्टियर जॉय विच नन कैन शेयर. शेयरविन चाहते तो ये कर सकते थे. ऑस्टियर जॉय, तपस्वियों में तपस्वी हैं, लेकिन हम सबको पत्र लिख लिख के क्या क्या हर तरह की, निरोधा को एक जगह लिखते हैं मजाक मजाक में, बंगला में एक छोटी सी कविता लिखते हैं, कहते हैं काश मुझे चिट्ठियां ना लिखनी पड़ती तो मैंने भी स्वयं को सुप्रमेंटलाइज कर लिया होता और अपने आनंद धाम में रह रहा होता. और वो बड़ी मजाक से भरी हुई कविता है. फिर कहते हैं देखो ये कविता किसी को दिखाना नहीं, बड़ी अनडिवाइन सी है, लोग मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारा भी और मेरा भी. भगवान कैसे. और रात रात को उनके आंखें उन्होंने फोड़ ली थी लिटरली. किस लिए? क्योंकि वो चाहते थे हम सब का उत्थान हो. लेकिन क्या डिसाइपल्स हैं हम लोग कि हम लोग वो भी नहीं पढ़ते. चलने की बात बहुत दूर है. नहीं, कम से कम लेटर्स ऑन योगा, जो कठिन नहीं है, सबसे सरल है. सीधा लोग लाइफ डिवाइन नहीं पढ़ी जाती क्योंकि बहुत कठिन है. कोई बात नहीं, पत्रावली पढ़ो. पत्रावली बहुत सरल है. इमेजिन, माने उन्होंने किस लिए ये सब किया? क्यों रिफ्यूज किया अपने अंदर सुपरमेंटलाइजेशन? ये सब दिया ताकि हम उसको कम से कम पढ़ें, मिनिमम. माने उसको जीना तो एक और आगे की बात है. लेकिन अशुपति उसको रिफ्यूज करते हैं. रिफ्यूजिंग द काम दैट लिव्स फॉर काम एलोन. शांति जो केवल शांति के लिए हो, नहीं, वह शांति नहीं चाहिए. कौन सी शांति चाहिए? वह शांति जो विश्व समर में भी, संग्राम में भी वैसी की वैसी शांति रहे. जो विश्व में जो शक्तियों का खेल है उसमें भी वो, बल्कि उसमें सहायक हो, ऐसी शांति चाहिए, शिव की शांति. और फिर टू हर इट टर्न्ड, फॉर होम इट विल टू बी. माँ की ओर उनका हृदय मुड़ा, जिसके लिए वो जैसा वे चाहें वैसा बनना चाहता था। इन द पैशन ऑफ इट्स सॉलिटरी ड्रीम इट ले लाइक ए क्लोज्ड साउंडलेस ओरेटरी। कैसी अवस्था थी अशुपति के अंतर मन की, एक स्वप्न मानो एक स्वप्न की अवस्था में वो प्रवेश कर रहे थे उस अभिप्सा के साथ, और कोई ध्वनि नहीं, साउंडलेस ओरेटरी, चारों तरफ से एक ऐसा कमरा जो बंद हो और जिसके अंदर एक छोटी सी भी ध्वनि ना आती हो, है ना, मातृ मंदिर का चेंबर, इनर चेंबर। लेकिन इतना ही नहीं, आगे भी, इट ले लाइक ए क्लोज्ड साउंडलेस ओरेटरी वेयर स्लीप्स ए कॉन्सेक्रेटेड आर्जेंट फ्लोर, आर्जेंट सिल्वर। इनवर्डली जिसकी चेतना स्पिरिचुअल हो चुकी और सुप्रामेंटल के लिए वो प्रतीक्षारत है, और मातृ मंदिर में आर्जेंट वाइट फ्लोर, एक ऐसा वाइट फ्लोर जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित है। वेयर स्लीप्स, मानो वो निद्रा में है, समर्पित अवस्था में है, ए कॉन्सेक्रेटेड आर्जेंट फ्लोर लिट बाई ए सिंगल एंड अनट्रेम्बलिंग रे। इस हद तक डिस्क्रिप्शन है, एकमात्र एक ही रे आकर के उसके सेंटर में उसको लाइट कर रही है। अब शेयरविंद ने कैसे देखा होगा मातृ मंदिर, माता जी ने भी मातृ मंदिर अपने इनर विजन में देखा, ये एक इनर सत्य है। और ठीक वैसे जैसे ये आश्रम हमें अपने अंदर धारण करना है, माँ शेरविंद की समाधि हमको अपने अंदर धारण करनी है, माँ शेरविंद को अपने अंदर धारण करना है, वैसे ही मातृ मंदिर को भी हमको अपने अंदर धारण करना है। ये सब हमारी चेतना के आंतरिक सत्य हैं जिनको प्राप्त करने में ये बाहरी अवलंब बहुत अधिक सहायक हैं। लिट बाय ए सिंगल एंड अनट्रेम्बलिंग रे एंड एन इनविजिबल प्रेजेंस नील्स इन प्रेयर। मातृ मंदिर के बारे में माँ कहती है नो रिलीजन्स, कोई वहां पर इनविजिबल प्रेजेंस, माता जी हैं, कोई फोटो नहीं है, कोई समाधि नहीं, कुछ नहीं, रेलिक्स नहीं, इनविजिबल प्रेजेंस। लेकिन कितनी घनीभूत उपस्थिति है, बाहर जब हम आते हैं तो ट्रू कॉन्शियसनेस, माने का इट्स ए प्लेस टू फाइंड योर ट्रू कॉन्शियसनेस। ऑन सम डीप ब्रेस्ट ऑफ लिबरेटिंग पीस, चारों तरफ क्या है, शांति है। All else was satisfied with quietude. This only knew there was a truth beyond. एक सत्य है जो पार है हमारी दृष्टि के, और उसको हमको बुलाना है, ट्रूथ। माता जी ने मातृ मंदिर के बारे में लिखा, इट इज ए प्लेस टू फाइंड द ट्रूथ, टू फाइंड द ट्रू कॉन्शियसनेस। केवल एकमात्र यही आवश्यकता है वहां पर, कि एक सत्य है जो हमारी समझ के परे है, और उसको पुकार, उसको खोजने की चेष्टा, उसकी वर्शिप, लेकिन अंदर अंदर इनविजिबल प्रेजेंस। ऑल अदर पार्ट्स वेयर डम्ब इन सेंटर्ड स्लीप कंसेंटिंग टू द स्लो डेलिबरेट पावर विच टॉलरेट्स द वर्ल्ड्स एरर एंड इट्स ग्रीफ। अब अशुपति की अवस्था से कनेक्ट, कि अशुपति ने यह देख लिया, अब वो क्या करें। अब रूपांतरण तो लंबा काम है, वो चाहते थे वो मर्ज हो सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव क्या किया, रूपांतरण, वो भी कैसा, व्यक्तिगत नहीं, समष्टि का। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ऑस्टियर जॉय को, वैसा काम जो अनमूव्ड है उसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो अब उनको किस चीज को स्वीकार करना है, कंसेंटिंग। अब देखिए, रिफ्यूज किया था, उसके साथ एक कंसेंट है, कंसेंटिंग टू द स्लो डेलिबरेट पावर विच टॉलरेट्स द वर्ल्ड्स एरर एंड इट्स ग्रीफ। रूपांतरण तो लंबी प्रोसेस है, अगर किसी को मैकडोनल्ड का पिज्जा वाली स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो और बहुत सारे जगह हैं, थोड़ा सा एक टेक्निक मिल जाएगी और थोड़ा प्रयास करेंगे, अंदर बहुत अच्छा लग रहा है, शांति हमने प्राप्त कर ली, वेरी गुड, ऐसी बहुत सारी जगह हैं, रूपांतरित हो गए। रूपांतरण बड़ी एग्जैक्टिंग प्रोसेस है। आज ही मैं पढ़ा था नलनीदा की डायरी, माय गॉड, नलनीदा श्री अरविंद को लिख रहे हैं, मेरी झूठ बोलने की आदत है, कैन यू इमेजिन, मैं चाहता हूं ना बोलूं पर मेरी वाणी से निकल जाता है, आप मुझे डाइसेक्टिंग टेबल पर लिटाकर इस महाअंधकार के अंदर जो कुछ इतना कुरूप है मेरे अंदर, एक बुचर का नाइफ डाल करके सब निकाल दीजिए, क्योंकि मैं पवित्र होना चाहता हूं, या सर्जन की तरह सब काट करके फेंक दीजिए। और बार बार लिखते हैं, एक जगह लिखते हैं, मुझे लगता नहीं कि मैं मनुष्य कोई कर सकता है, ये आप ही की कृपा कर सकती है, मैंने तो बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, एक से एक डाउट आते हैं मेरे मन में, इट इज नॉट ईजी। और वह नलिदा माता जी कहती हैं, एन रूट टूवर्ड सुपरमैन, क्यों? क्योंकि यही वो मार्ग है, ये एक लंबी प्रोसेस है। अगर हम घबराएंगे इन चीजों से, अंधकार देखने से, तो हम नहीं कर सकते हैं, विचलित हो जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी अपने अंदर से समस्या निकली या किसी के अंदर से, तो हम विचलित हो जाएंगे, तो नहीं कर सकते हैं, बहुत धैर्य के साथ। तो अशुपति ने कंसेंट किया किस चीज के लिए, टू द स्लो डेलिबरेट पावर। अगर रोटी अच्छी बनानी है, दाल अच्छी बनानी है, भोजन अच्छा बनाना है, डाइनिंग रूम में कहने की जरूरत नहीं, तो उसको धीमी आंच पे पकाया जाता है। अगर आप तेज कर दोगे आंच की, जल्दी बन जाए तो क्या होगा, सब जल जाएगा। तो धीरे धीरे पकाना होता है। कंसेंटिंग टू द कॉस्मिक लॉन्ग डिले, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस योग में कोई एक व्यक्ति अकेला अपने को रूपांतरित नहीं कर सकता जब तक उसके आसपास कुछ हद तक समष्टि भी रूपांतरित नहीं हो जाती है। शेरविन सिंथेसिस ऑफ योग में लिख देते हैं शुरू में ही कि इस योग में तुम अपनी व्यक्तिगत विजय प्राप्त भी कर लोगे, तो फिर तुमको उस कठिनाई पर एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर तुम केवल व्यक्ति नहीं बचे बल्कि तुम्हारा व्यक्तित्व विश्व व्यक्तित्व के समान हो गया है। टायरलेस टाइमलेसली वेटिंग थ्रू द पेशेंट ईयर्स हर कमिंग दे हैड आस्क्ड फॉर अर्थ एंड मैन। पेशेंट ईयर्स, लंबा समय लगेगा, एक साल, दो साल, दस साल, बीस साल, चालीस साल, एक जन्म, दो जन्म, और उसमें क्या चीज की, केवल एक प्रतीक्षा, हर कमिंग। माँ का ही स्पर्श रूपांतरित कर सकता है, इसलिए बार बार श्री अरविंद कहते हैं इस योग की एकमात्र यही विधि है, जिस भी रूप से माँ के प्रति खुल जाओगे, जिस जिस भाग को खोल दोगे, वो भाग में रूपांतरण की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। दिस वॉज द फायरी पॉइंट दैट कॉल्ड हर नाउ। अंदर उनके मातृ मंदिर बन चुका है, माँ की इनविजिबल प्रेजेंस है, अब वो वहां फायरी पॉइंट, माँ 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 पुकार रहे हैं। एक्सटिंक्शन कुड नॉट क्वेंच दैट लोनली फायर। सजेशन आ रहे हैं, बड़ा कठिन योग है, पास में देखो पड़ोसी गांव में एक योगी आए हुए हैं, देते हैं आपको दीक्षा, देते हैं और मंत्र देते हैं, और बहुत जल्दी बड़े सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के, और साथ में गिरवा वस्त्र भी पहनते हैं, और उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर माला धारण की हुई है, और हम लोग भटक जाते हैं, ये स्वामी वो स्वामी। लेकिन ये जो योग है, ये लंबा योग है, एक्सटिंक्शन ये नहीं चाहिए अशुपति को। इट सीइंग फिल द ब्लैंक ऑफ माइंड एंड विल, थॉट डेड, इट्स चेंजलेस फोर्स अबोर्ड एंड ग्रू, आर्म्ड विद द इंट्यूशन ऑफ ए ब्लिस टू विच सम मूव्ड ट्रैंक्विलिटी वॉज द की। क्या अनुभव कर रहे हैं अपने अंदर, एक ट्रैंक्विल अवस्था जिसके अंदर एक आनंद की स्फूर्णा, इंट्यूशन, अंतर्भास कि एक आनंद है जो हल्का सा कहीं पर उनको प्रतीत हो रहा है उस शांति में। चार पांच लाइन और, इट परसीवर्ड थ्रू लाइफ्स ह्यूज एम्प्टीनेस। धीरे 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 वो रूपांतरण की प्रोसेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। एमिट द ब्लैंक डिनायल्स ऑफ द वर्ल्ड, सब लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, देखो अपने आसपास कोई रूपांतरित दिख रहा है, सैंपल कोई तो दिखे, कोई ये चीज नहीं होगी, डाउट, डिनायल्स, ये रूपांतरण योग नहीं, कैंसिल हो गया, ये सब सजेशन साधकों को आते हैं और सबको हमको रिजेक्ट करना होता है। लोग रिजेक्शन से सोचते हैं, खाना सीधा रिजेक्ट कर देना, कपड़े रिजेक्ट कर, दिस इज द रियल रिजेक्शन, डाउट्स को रिजेक्ट करना, डिनायल्स को रिजेक्ट करना, ये सब आएंगे। इट सेंट इट्स वॉइसलेस प्रेयर टू द अननोन, इट listened फॉर द footsteps ऑफ इट्स होप्स रिटर्निंग थ्रू द void immensities, इट waited फॉर द फिएट ऑफ द वर्ड दैट कम्स थ्रू द स्टिल सेल्फ फ्रॉम द सुप्रीम। माता जी की प्रतीक्षा, उनकी वाणी की प्रतीक्षा, उनके प्रकाश, उनके आनंद, उनकी शांति, उनके तेज, उसकी प्रतीक्षा। इसी प्रतीक्षा में अष्टपति के दिन और रात व्यतीत हो रहे हैं। ये लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 1910 से 1914 या बल्कि 1920, क्योंकि माता जी की फाइनल कमिंग, हर कमिंग दे हैड आस्क्ड फॉर अर्थ एंड मैन। तभी तो जब माता जी आई, शेरविंद कहते हाँ अब ये संभव है, अब मैं लिख सकता हूं। देख तो उन्होंने सब लिया था, अब मैं लिख सकता हूं सुप्रामेंटल के बारे में। और जब माता जी आ जाती हैं, कहते अब ये प्रयोग किया जा सकता है। उसके पहले शेरविंद कहते हैं मैं स्वयं को तो सुप्रामेंटलाइज कर सकता था, अपनी सहायता कर सकता था, लेकिन माता जी के आने के पहले मैं किसी और की सहायता नहीं कर पाता। जब किसी ने पूछा माता जी के आने से आपके योग में क्या योगदान हुआ, कहते हैं वह सब कुछ जो मुझे एक लंबा समय लगता मैंने झट से प्राप्त कर लिया, और उनके आने के पहले मैं स्वयं को तो हेल्प कर सकता था लेकिन किसी और को हेल्प नहीं कर सकता था। हर कमिंग दे हैड आस्क्ड फॉर अर्थ एंड मैन। ये कैंटो समाप्त हुआ। अगले हफ्ते और भी सुंदर कैंटो है, द विजन एंड द बोन।